ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबकी अति प्रिय इंदौर जोन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय जयंती दीदी जी हम सभी के बीच उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी पिछले 45 वर्षों से निरंतर अपने समर्पित जीवन के साथ यज्ञ की सेवा में अथक होकर सेवाएं दे रही है। दीदी जी की विशेषता यही है कि आप ज्ञान और योग की गहरी क्लास द्वारा सभी आत्माओं की सच्ची पालना और आध्यात्मिक शक्ति और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की आप प्रेरणा देती है। आपकी वाणी में अनुभव की गहराई है, दृष्टि में स्नेह एवं शक्ति का वरदान है। आदरणीय दीदी जी जुरिस्ट विंग की इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर है, साथ ही सिक्योरिटी विंग की सेवाओं में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में आप इंदौर कॉलोनी नगर सेवा केंद्रों की संचालिका है। आपकी पालना में 40 गांव आध्यात्मिक रूप से पल रहे हैं, जहां पर अनेकों लोगों ने अपने जीवन को नशामुक्त जीवन के रूप में ढाला है। आज आपके क्लास का विषय है कर्मों की गहन गति, बहुत ही पावरफुल विषय है। दीदी जी के लिए कुछ पंक्तियां। 45 वर्षों का समर्पण सेवा का है प्रमाण, जयंती दीदी की वाणी में झलकता है वरदान। ज्ञान की मीठी पालना, योग की शक्ति अपार, दीदी के स्नेह से होता है जीवन का उद्धार। कर्मों की गुह्य गति को जो सहज समझा जाए तो हर आत्मा के जीवन में नई रोशनी छा जाए, तो हर आत्मा के जीवन में नई रोशनी छा जाए। तो आज दीदी जी हम सभी को कर्मों की गहन गति विषय पर गहराई से समझाएंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। हम आज जो कुछ भी है, आज हमारा ये जीवन सफल है या असफल है, इसका कारण हमारा स्वयं का ही कर्म। भगवान ने कर्म के लिए कहा हुआ है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की आशा नहीं करो। कर्म सबसे बलवान है और कर्म ही हमारी पहचान है। हम पुण्यात्मा हैं, पापात्मा हैं, देवात्मा हैं, हम जो भी हैं उसकी पहचान हमारा कर्म है। हम ऐसा कर्म करते हैं जिस कर्म को देखकर कोई कहता है यह तो देवता है, ये तो भगवान तुल्य है। और हम ऐसे कर्म करते हैं जिसको देखकर लोग कहते हैं यह तो महापापी है। तो ये कर्म हमारी पहचान होती है। कर्म ऐसा है जिसे कर्म के करने के बाद हम चाहें या न चाहें उसका फल हमें स्वतः ही मिलता है। चाहे हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हमारे करने के अनुसार उसका फल हमें मिलता ही है, हम चाहें या न चाहें। इसीलिए हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कर्म हमें सफल जीवन जीने के लायक बना दे। हमारा कर्म ऐसा ना हो जो हम असफल हो जाएं, हम अपने जीवन से हार खा लें। संसार में ऐसे कई लोग दिखते हैं आज, कर्म बहुत करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कुछ करने के बावजूद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वो अपने आप को समाप्त कर देते हैं, अर्थात जीवन से हार खा लेते हैं। कारण क्या है? अन्य कोई नहीं वरन वो हमारा ही कर्म है। कर्म वो है जिसे करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगे, दिल को सुकून मिले, और जिसके लिए हम वो कर्म करते हैं वो बहुत अच्छा फील करे और दिल से दुआ दे तो वो कर्म पुण्य कर्म कहलाता है। उस कर्म में हमारी कमाई है, वो कर्म हमारा खजाना बन जाता है, उसे श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। उस कर्म को करने के बाद हमें खुद को ही अच्छा लगता है, दूसरों को तो लगता ही है, वो श्रेष्ठ कर्म है। इस समय कलयुग के अंत में हम जो भी कर्म करते हैं वो सारा ही विकर्म के खाते में जाता है, क्योंकि हमारे अंदर है देह का भान, अभिमान। हम सभी इस कलयुग के अंत में आकर हम सभी आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो गए, और इसे ही हम अपना सब कुछ समझते हैं, इसे ही लेकर के हम चलते हैं। देह भान इतना पक्का हो गया है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। आज अगर हम किसी से पूछे आप कौन हो तो अपना परिचय वो कैसा देता है? मेरा नाम ये है, मेरा धाम ये है और मेरा काम ये है। नाम, धाम, काम, ये परिचय तब तक है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। जिस दिन वो इस संसार से चला जाएगा उस दिन कोई आकर पूछे कि हम फला से मिलना चाहते हैं तो कहेंगे अब वो कहाँ है, वो तो गए। कहेंगे ये जो है, ये सामने जो लेटा हुआ व्यक्ति है, कहेंगे ये व्यक्ति नहीं है, ये तो मिट्टी है। तो हम किसके बारे में परिचय दे रहे थे? जिसका नाम था, धाम था, काम था, वो तो अभी भी है, लेकिन जो चला गया उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। और वो है चेतन शक्ति आत्मा। हम सभी आत्माएं इस संसार में कर्म रूपी क्षेत्र में कर्म ही करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सब आत्माओं का घर इस दुनिया से पार परम धाम है, जहां हम कर्मातीत अवस्था में थे। हमारे पास कोई कर्म नहीं था क्योंकि देह नहीं था, देह भान नहीं था, तो कोई कर्म भी नहीं था। हम सब आराम से वहां पर एक जगह, जैसे लाइट जलती है ऐसे एक जगह टिके हुए रहते हैं, लेकिन इस संसार में आए तो कर्म ही करने के लिए आए। लेकिन हम भूल गए हमें क्या करना था, हम किस लिए आए, सब कुछ भूल गए। अब हमारा जो कर्म हो गया है इसे हम नहीं जानते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये कितना सही है, कितना गलत है, और इस कर्म को करने के बाद हमें क्या मिलेगा। साधारण रीति से हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमें मालूम पड़ता है जिस कर्म को करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, वो कर्म हमारा पुण्य की कमाई कराता है। और जिस कर्म को करने के बाद हमारा दिल खाता है वो कर्म पाप का भागीदार बनाता है, लेकिन हम इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। आज कलयुग के अंत में आप देखो हर स्थान पर कर्म कैसे होते हैं, और जिस कर्म के कारण आज ये संसार नरक तुल्य बन चुका है। संसार का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इन पापों से अछूता हो। हर जगह, चाहे आप मंदिर में जाओ, चाहे आप विद्यालय में जाओ, चाहे आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में भी लोग डॉक्टर को भगवान तुल्य समझते हैं, क्योंकि वो मरते हुए इंसान को बचा लेता है अपने दवाई से, अपने अनुभव से। इसीलिए डॉक्टर को भी भगवान तुल्य समझते हैं। परंतु आज देखो तो वो डॉक्टर भी लालच के कारण, कमाई के कारण वो क्या नहीं करते हैं। हॉस्पिटल में एक बीमार व्यक्ति पहुंचता है, और जब वो बीमार व्यक्ति पहुंचता है तो उसको कहा जाता है इसका ऑपरेशन जरूरी है, और इसके ऑपरेशन के लिए हमें 5 लाख चाहिए। अब वो गरीब व्यक्ति 500 भी वो निकाल नहीं पाता है, बड़ा कष्ट होता है 500 रुपया लाने में, वो 5 लाख कहाँ से देगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप इसे भर्ती तो कर लो, काम करना शुरू कर दो, ये तो बहुत बीमार है, इसे आप थोड़ा सा तो राहत दे दो, मैं तब तक इंतजाम कर लूंगा। पर डॉक्टर कहता है नहीं, जब तक पैसा यहाँ नहीं रखोगे मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा। इस बहसबाजी में वो जो बीमार व्यक्ति आया था वो तो चला जाता है, खत्म हो जाता है, डॉक्टर को कुछ भी नहीं लगता है। परिजन खूब हंगामा करते हैं लेकिन क्या मिलेगा, वो तो चला गया ना। अब यही डॉक्टर, इसको रिजल्ट क्या मिलता है, उसके घर में उसकी पत्नी जो पूरा संसार संभालती है, अपना घर चलाती है, बच्चों को भी लालन पालन करती है, वो अचानक बीमार पड़ती है, और उसकी बीमारी इतना जल्दी बढ़ जाता है कि वो, उसके पास कोई भी नहीं था, ना उसके बच्चे थे, ना उसका पति था, कोई भी नहीं, पति तो हॉस्पिटल में है। अब वो बीमार पड़ जाती है तो वो फोन करती है, जब वो फोन करती है तो फोन पर सिर्फ इतना ही बोल पाती कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, और इतना बोलते से ही वो बेहोश हो जाती है। अब जिसको वो फोन करती, डॉक्टर का तो फोन लगा ही नहीं था क्योंकि वो कहीं और उलझा हुआ था, तो उसने किसी और को फोन किया था। अब जिसको उसने बोला इतनी बात तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि फोन कट जाता है और कोई जवाब नहीं आता है। तो वो दौड़ता हुआ आता है, देखता है घर बिल्कुल खुला पड़ा है और वो बेहोश पड़ी है, उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में लाने में उसको काफी देर लग जाती है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। जब वो पहुंचता है उसी हॉस्पिटल में जहां उसका पति काम करता है, डॉक्टर है, तो जैसे ही वो पहुंचती है डॉक्टर देखता है और तुरंत उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू होते से ही वो खत्म हो जाती है। तब उस डॉक्टर को एहसास होता है कि आज सुबह भी मेरे सामने एक बीमार व्यक्ति मृत्यु को पा लिया, और उसकी देखभाल में मैंने सिर्फ बहसबाजी करता रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आज मुझे भी ये दृश्य देखने को मिला कि मेरी पत्नी भी, जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली, जबकि मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मैंने उसको एडमिट कर लिया, जबकि मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन वो नहीं बच पाई। काश मैंने अगर उसकी ट्रीटमेंट की होती तो शायद ये पल नहीं होता। तो देखो आज ये लोभ लालच इंसान को कहां तक पहुंचा दिया। लोग कैसे कैसे दुखी हो रहे हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेजों में भी आप देखो, पढ़ाई नाम मात्र भी नहीं है। जो भी पढ़ाई होती है वो सिर्फ कमाई के लिए ही होती है। उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चा शिक्षित होकर कुछ देश के लिए करे, अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। वो शिक्षा नहीं होती है। बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ कमाई होती है और उस कमाई को पाकर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आप मंदिरों में भी देखो, जहां लोग श्रद्धा से जाकर नतमस्तक होते हैं, उस मंदिर में भी आप देखो, जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाइन अलग होती है, उनको अलग प्रवेश मिलता है, उनके लिए अच्छे से पूजा पाठ होती है। और जो बेचारे गरीब हैं वो भीड़ में धक्का खाते रहते हैं, उसको प्रवेश भी नहीं मिलता, वो बड़े लोगों की ही खातिरी होती रहती है और वो घंटों खड़े रहते हैं। बहुत देर में उनको प्रवेश मिलती भी है तो पूजा ठीक रीति से नहीं होती और वो इतना खुश भी नहीं हो पाते। तो वहां भी जाकर वो चीज नहीं मिल पाती जो होना चाहिए था। ऐसे ही आप सभी दूर देखो, आप घर में भी आप देखो, घर में वो प्रेम, वो व्यवहार नहीं मिलता है। घर जो एक आराम का स्थान होता है, जहां परिवार आपस में प्रेम से रहते हैं, आज वो परिवार, उनमें वो प्रेम नहीं है, उनमें भी सिर्फ स्वार्थ की भावना है। और वो भी यही चाहते हैं, बस मेरा हो जाए, मेरा काम हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मान हो जाए, शान हो जाए। इसी चक्कर में वो रहते हैं, घर को भी ठीक से देखते नहीं, पति पत्नी में भी वो प्रेम व्यवहार नहीं, दोनों की लड़ाई होती रहती है, बच्चों की देखभाल नहीं। तो वो घर भी जो आराम का स्थान है, प्रेम का स्थान है, वो चीज नहीं है। और वहां भी सिर्फ एक दूसरे से लड़ते, झगड़ते, दुखी होते रहते। तो घर में भी ये व्यवहार, आज अगर उस घर में कोई बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों की देखभाल भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। बेटा बहू होगी तो बहू सास ससुर की देखभाल ठीक से नहीं करेगी, वो भी अपना स्वार्थ देखती है, कहती है मैं कोई नौकर हूं क्या, आप लोग अपना काम करो, नहीं जचता है तो चले जाओ। और कई बार तो कुछ भी नहीं करते हैं बुजुर्ग बेचारे। अगर कहते हैं ठंड लग रही है, कपड़े दिला दो, गर्म कपड़े चाहिए, आंखों में कुछ तकलीफ हो रही है, चश्मा ठीक करा दो, दिलवा दो, या मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है तो मुझे दवाई दिलवा दो, उन लोग न दवाई देते न कपड़े देते, ठंड में बेचारे सिकुड़ कर पड़े रहते, कुछ भी देखभाल नहीं करते, ठीक टाइम पर खाना भी नहीं देते, बल्कि भूखा रख देते हैं, उनसे अपना काम भी करवा लेते हैं, और अगर नहीं करते तो धक्के मारकर घर से निकाल देते। कितनी घटनाएं रोज देखने को मिलती है। आखिर वृद्धाश्रम भेज देते हैं, कोई माना उनके साथ भी वो व्यवहार नहीं होता जो उनको मिलना चाहिए। तो ये सब क्या श्रेष्ठ कर्म है? क्या ऐसे कर्म करने के लिए हम सब मानव यहां पर आए हुए हैं? इस संसार में हमें क्या यही सब करना था जिससे हम एक दूसरे को दुख दें? नहीं, हम सभी सुखी तो चाहते हैं, पर हमारा कर्म ही ऐसा है जो हम दुख देते हैं और खुद भी दुखी होते रहते हैं। अच्छा, जो कर्म हमने किया, क्या वो कर्म घूमकर हमारे पास नहीं आएगा? क्या हमें भी ये दिन देखने को नहीं मिलेगा कि जब हम भी असमर्थ हो जाएंगे, हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे, हम भी अगर किसी का रास्ता ताकेंगे कि ये मेरा ये काम कर दे तो क्या कोई करेगा? नहीं। तो कर्म से हमको भी दुख मिलेगा, पर वो सोच वो विचार नहीं है। सिर्फ जब तक हमको मिलता रहे तब तक हमको यही करना है, यही विचार अंदर रहता है। तो इस कर्म को कहा जाता है विकर्म। हम जो भी कर्म करते हैं विकर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म बहुत कम करते हैं, गिने चुने ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, बाकी तो सारे ही इसी प्रकार के कर्म। अगर न भी मुंह से कुछ बोले तो व्यवहार से हम बुरा करते हैं, देखभाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं कि हमारे पास आएंगे, हमारा ख्याल करेंगे, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, मुंह घुमा के चले जाएंगे। घर में वो अकेले रहेंगे, हम चले गए कहीं पिकनिक में चले गए या पार्टी में चले गए, बोल के जाएंगे कि हम आज खाना खा लेंगे, आप लोग अपना देख लेना, उनके लिए कुछ भी नहीं करके जाएंगे। इस प्रकार के कर्म हमें क्या सुख देते हैं? ये सारे कर्म हम सब प्रतिदिन करते हैं, कुछ नहीं तो व्यवहार तो खराब करते हैं, कभी तो मुंह से कुछ बोल भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो ये सब विकर्म हमसे अनवरत होते ही रहते हैं। अगर हम ख्याल करें कि हमने आज सारा दिन क्या क्या किया, तो आपको मिलेगा कि हम पूरा दिन कुछ न कुछ तो गलत करते ही आए। कभी झूठ बोल दिया, कभी क्रोध में कुछ बोल दिया, कभी लोभ लालच में आ गए, कभी अहंकार में आ गए। इस तरह के कर्म हमको हमारे होते ही रहते हैं। लोग बाग अपने बच्चों को भी क्या शिक्षा देते हैं, देखो तुम करोड़पति के बच्चे हो, तुम्हें ये छोटी कमाई करने वाले ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनसे दोस्ती नहीं करनी है, तुम बड़े घर के हो, ऊंच कुल के हो। वो जो बच्चा सीखा, उसका जो देह अभिमान जागा, तो वो क्या करेगा, वो जरूर दूसरों को कुछ ना कुछ बोलेगा, कोई और ऐसे ही उसके पास अगर आए तो उसको वो नीचा दिखाएगा, उसके साथ व्यवहार गलत करेगा, उसके साथ अच्छा बातचीत भी नहीं करेगा। अगर उसको कुछ भी करने के लिए वो बोलेगा कि दोस्त मेरा ये काम कर दो या फलाना कर दो, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो नहीं करेगा, बल्कि उसको उल्टा सीधा बोल के उसको नीचा दिखा के चला जाएगा इसका, या मारपीट भी करेगा। तो आप देखो इस प्रकार के कर्म आज दुनिया में हो रहे हैं, और इसीलिए पूरा संसार आज नरक जैसा बन चुका है। सुख नाम की चीज नहीं है, है तो क्षणिक है, अभी सुख है तो अभी देखो कुछ ना कुछ दुख की घटनाएं हमारे सामने आती है। आज हम देखते हैं सड़क में चलते हुए इंसान कुचल जाते हैं, आज हम देखते हैं बिल्कुल भी कोई ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन कहीं से कोई आतंकवाद आता है, अचानक मार डालता है, अचानक कुछ हो जाता है। तो ये सब हमारा अपना कर्म ही है, हमें लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन हमने किसी और समय किया होगा, आज नहीं किया लेकिन किसी और समय किया होगा, उसका हमको ये फल मिला। चलते चलते कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित होती है तो ये सब हमारे अपने ही कर्म का फल है। जब हमें ज्ञान मिलता है तो ये बातें समझ में आती है, तब तक जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक दुख होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों। कई बोलते भी हैं कि मैं ही भगवान को मिला था क्या, मुझे ही इतना दुख देखना पड़ा। भाई घर में इतने सारे लोग थे, अचानक अचानक कोई बीमारी में चला गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई को किसी ने हत्या कर दी, तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों देखना पड़ रहा है। परंतु ये सब हमारे अपने ही कर्म का फल है, किसी न किसी जन्म में हमने ये सब कर्म किए थे जिसका आज हमको इस परिणाम मिल रहा है। और कर्म हम चाहे जान के करते हैं या अनजाने में करते हैं, लेकिन जो हमने किया उसका फल अवश्य ही मिलेगा। एक धार्मिक कहानी है, हम लोग कहानी के हिसाब से ही पढ़ते आए, महाभारत में भीष्म पितामह का नाम आप सबने सुना होगा। भीष्म पितामह अपना अंतिम समय जब वाणों की शैया में लेटे हुए थे, चारों ओर से खून रिस रहा था, तब भीष्म पितामह ने कृष्ण उनसे मिलने गए, अकेले जब सब लोग चले गए थे तब वो उनसे मिलने गए, तो कृष्ण को देखकर कहते हैं, हे केशव, मेरी क्या गलती थी जो मैं आज इस प्रकार वाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूं, सारा शरीर छलनी हो गया है, भयानक दर्द हो रहा है, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने अपने पीछे के 100 जीवन को देख लिया, ध्यानस्थ होकर मैंने अपने 100 जीवन को देखा अपने पीछे के, लेकिन हमको कोई ऐसा कर्म नहीं दिखा जिससे मुझे आज ऐसी सजा मिली। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह आप एक जन्म और पीछे जाओ, 101 जन्म पीछे जाओ। तो भीष्म पितामह ने देखा कि 101 जन्म में भीष्म पितामह एक राजा थे और एक लड़ाई जीतकर वो लौट रहे थे, उनके सारे सैनिक बहुत खुश बहुत मस्ती से चल रहे थे, भीष्म पितामह रथ पर बैठे थे और रथ आगे बढ़ता जा रहा था, जंगल का रास्ता था। एक सैनिक अचानक दौड़कर आया और कहता है कि महाराज, आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ है, वो घायल है, और अगर हम उसकी वहां से जाते हैं तो वो सांप कुचल जाएगा, तो क्या करें। आप सब जानते हो इस दुनिया में आज जितना पाप है, उस समय इतना पाप तो था नहीं, तो उसने कहा ये कुचल जाएगा, महाराज हम क्या करें, जीव हत्या करें। तो महाराज उनको कहते हैं कि आप उस सांप को किनारे कर दो। तो उसने क्या किया, उसने उस सांप को अपना जो बाण था उसमें ऐसा लपेटा और ऐसा फेंक दिया, फेंक दिया तो बाजू में झाड़ियां थी, कांटे की झाड़ियां, सांप वो झाड़ियों में जाकर गिरा और वो कांटा उसके पूरे शरीर में धंस गया। सांप छटपटाता रहा पर कांटे से वो कैसे निकले, वो निकल नहीं सका, और सांप जितना हिलता गया अपने को निकालने के लिए कोशिश करता गया, उतना वो कांटे से और ही फंसता गया और आखिर तड़प तड़प कर वो मर गया। तो जब ये दृश्य देखा, भीष्म पितामह ने कहा, केशव ये काम मैंने तो नहीं किया था। तो बोले, तुमने नहीं किया था पर तुम्हारे आदेश से उसने ऐसा कर्तव्य किया था, तुमने ही उसको कहा था कि उसको किनारे कर दो। अब किनारा उसको जिस भी हिसाब से दिखा, उसका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, कर्म तो हो गया ना, कर्म चाहे श्रेष्ठ हो चाहे भ्रष्ट हो उसका फल तुमको मिलना ही है, तुम चाहो या ना चाहो। तो देखो, कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। तो हम सब जो आज संसार में ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, इस तरह से चलते हैं, अपने साथ के लोगों को, अपने पेरेंट्स को हम सुख नहीं देते हैं, थोड़ी थोड़ी के लिए खाने में, दवाई देने में, कपड़े दिलाने में हम नहीं करते हैं, तो इसका क्या फल होगा? क्या कभी हमने सोचा है? हमको भी नहीं मिलेगा, पर ये चीज कभी महसूस भी नहीं करते। जानते जरूर हैं, बोलने में जरूर बोल जाएंगे कि हाँ जैसा करेंगे वैसा तो भोगना पड़ेगा, लेकिन महसूस नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं और हमें आज नहीं तो कल यही चीज मिलेगा, ये कर्म हमारे पास लौट कर आएगा। तो कर्म की गुह्य गति है, कर्म छोड़ेगा नहीं। आप सोचते हो हमने कर डाला तो हम फ्री हो गए। कई सोचते हैं कि मैं ऐसी हत्या कर दूं, किसको क्या पता चलेगा, लेकिन पता चलता ही है, पकड़े भी जाते हैं, सजाएं भी होती है, कोई इन सब बातों से छूट नहीं सकता। आज नहीं तो कल ये चीज मिलता जरूर है। तो इस प्रकार के कर्म आज कलयुग के अंत में, इसको कहा जाता है विकर्म। हम सबके कर्म ऐसे नहीं थे, और जब आज इस हालत में हम पहुंच गए तो हम कहते हैं हे भगवान, ये दुनिया दुखदाई है, हमें अब इस दुनिया में रहना नहीं है, हमको यहां से पार ले चलो। हम खुद कहते हैं, लेकिन ये दुख की दुनिया पहले नहीं थी। इस दुनिया में हम आज ही नहीं आए हैं, हम बहुत पहले से आए हुए हैं और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। आज हम क्यों पुकार रहे हैं भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं है? पहले तो नहीं बोलते थे? इसका मतलब कि पहले हम सुखी थे और हम सुख से चलते रहे, हमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से पूरा किया, इसीलिए जीवन में सुख मिलता रहा। तो हमारा वो जो कर्म, वो हमको आज भी याद आता है कि हम सुखी थे, इसलिए हम कहते हैं भगवान हमें सुख दो। कोई नहीं कहता हमें दुख दो, जबकि सुख मालूम भी नहीं कि सुख कैसा होता है और सुख का वो समय कौन सा था, ये किसी को पता नहीं। कहने में तो जरूर कहते हैं कि यही संसार में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दुनिया सतयुग था, स्वर्ग था, तो ये महसूस नहीं कर पाते कि यही संसार इतना सुंदर था, इतना अच्छा था और ऐसा स्वर्ग समान था जहां प्रति व्यक्ति सुख से रहते थे, कोई किसी को दुख तकलीफ नहीं देते थे, वो समय कितना सुंदर था। तो सुख को हम याद करते हैं, तो परमात्मा पिता हमें उस दुनिया की पहचान देते हैं। आज जब कलयुग के अंत में हम चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो परमात्मा पिता हमारी पुकार पर आकर हमें ये बातें बताते हैं कि तुम पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज हो, तुम अपने आप को भूल चुके हो, तुम पहले आत्म अभिमानी थे, तुम पहले मानव नहीं देव थे, तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां थी, तुम्हारे पास दैवी गुण थे, तुम देवी देवता कहलाते थे। और वो समय था जब देवी देवताएं थे, वो सतयुग था, आज कलयुग है। सतयुग में तुम सभी देही अभिमानी थे, तुम अपने आत्मिक स्मृति में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, किसी में किसी का किसी के साथ कोई मतभेद नहीं था। आज तो हरेक का हरेक के साथ मतभेद है, दो व्यक्ति अगर एक घर में रहते हैं तो भी मतभेद है, दोनों एक मत से नहीं चलते, एक कहता ऐसा दूसरा कहता ऐसा, तो एक दो मिलते ही नहीं है, झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन वो समय था जब झगड़ा नाम की चीज नहीं था, क्योंकि विषय विकार नहीं था, देह भान नहीं था, रावण राज्य भी नहीं था, वो देवी देवताओं की दुनिया थी। सब सुखी सब संपन्न थे क्योंकि विषय विकार नहीं था, तो लोग न रोगी थे न भोगी थे। जब भोग विलास नहीं था तो वो माला माल थे। अखुट अकीचार धन दौलत था जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। आज तो लोग गिनती करते हैं ना पैसों की, लेकिन वो समय था जब गिनती भी नहीं होती थी। लोग ऐसे उठाते थे ऐसे देते थे, गिनती नहीं। किसी को कुछ देना होता था तो उस समय सभी एक समान थे, यथा राजा तथा प्रजा थे। सिर्फ मानव ही नहीं लेकिन जंतु जानवर भी एक दूसरे को दुख नहीं देते थे, सब सुख से रहते थे। शेर बकरी एक घाट में पानी पीते थे, कोई किसी को दुख नहीं देते थे। ऐसा सुंदर समय था क्योंकि जब संसार का सबसे श्रेष्ठ जीव मानव इस प्रकार से चलते थे तो उनके पीछे जो छोटे जीव थे वो भी उसी अनुसार चलते थे। सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। संपन्न थे, माला माल थे, कोई नहीं कहता था हमें संसार से छुड़ाओ। संसार को स्वर्ग कहा जाता था। तो ऐसा समय था तो परमात्मा पिता कहते अब कलयुग का अंतिम समय है, अब फिर से वही सतयुग आने वाला है और वो सतयुग में कौन जाएगा? तुम ही जाओगे, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा और उसके लायक बनने के लिए तुम्हें राजयोग सीखना होगा। राजयोग के आधार से तुम्हें अपने जीवन को ऐसा बनाना होगा, योगी जीवन बनाना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। जब तक तुम योगी नहीं बनोगे, भोग विलास से निवृत्त नहीं होंगे, तब तक तुम उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकोगे और तुम्हारा जीवन सुखी भी नहीं बन सकेगा। इसीलिए तुम योगी बनो, पवित्र बनो। तो परमात्मा ने ये जो शिक्षा दी, एक लाइन की शिक्षा, कि तुम अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा को भी आत्मा रूप से ही, ज्योति रूप से ही याद करो, तो तुम पूर्ण हो जाओगे, संपूर्ण हो जाओगे। सिर्फ एक लाइन की शिक्षा, और ये शिक्षा हमें दानव से देव बना रहा है। आज मानव मानव नहीं दानव हो चुका है, सारे आसुरी संस्कार भर चुके हैं। अब परमात्मा आकर इन असुरों को फिर से देव बना रहे हैं कि तुम अपने को बदलो, तुम्हारा कर्म बदले, तुम अपने जीवन को बदलो, और जीवन को बदलने के लिए तुम श्रेष्ठ कर्म करो और वो है योगी जीवन बनाओ। जितना जितना तुम इस याद में रहोगे, जितना जितना तुम अपने जीवन को पावन बनाओगे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति सब कुछ आने लगेगा। जो कुछ भी बुरा हो चुका है सब अच्छा हो जाएगा। तो परमात्मा ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा हमें श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो कुछ भी करो भगवान की याद में करो। भगवान ने हमें सिखाया कर्म योग। ऐसा नहीं कि तुम एक जगह जाकर बैठ जाओ कि हमें कर्म नहीं करना है, घर परिवार छोड़ देना है, बस मैं तो योगी बन जाऊं। नहीं, भगवान ने कहा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तुम मुझे याद करो। कर्म योग, जो कर्म करो मेरी याद में करो तो वो कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्म होगा तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। अभी तक तुम भ्रष्ट कर्म करते थे, मेरी याद तो थी ही नहीं, स्वार्थ को सोचते थे, कोई ना कोई अपने ही लोभ लालच के कारण कर्म करते थे जिसके लिए तुम दुखी होते रहे। अब वो सब छोड़ो, तुम मुझे याद करो। मुझे याद करके जो भी कर्म करोगे श्रेष्ठ कर्म होगा, और श्रेष्ठ कर्म होगा तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारे दुख दर्द तुमसे दूर चले जाएंगे। तो परमात्मा ने श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया। आज तक दुनिया में कोई श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया नहीं। बोलते जरूर हैं चोरी नहीं करो, इस तरह की बातें नहीं करो जो लोगों को चुभ जाए, प्रेम से बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, ये लोग कहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देह का भान है। जब तक ये देह भान नहीं मिटेगा हम मधुर नहीं बोल पाएंगे, हम मीठा नहीं बोल पाएंगे, हम सद्व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। हमारे व्यवहार में कटुता जरूर होगी, जरूर होगी। हम किसी के लिए बलिदान नहीं कर सकते। बलिदान क्या? आज अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई अगर मांगने आते हैं तो हम दुत्कार दे देते हैं उसको, जाओ जाओ यहां से जाओ, नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है। खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसको अगर एक चीज दे देते, एक रोटी दे दो तो क्या जाएगा तुम्हारा? नहीं, वो नहीं करते हैं। कोई भूखा प्यासा आए तो हम दुत्कार देते हैं। हमारे कर्म इतने खराब हो चुके हैं। और अच्छे अच्छे लोग करते हैं, जिनके पास बहुत धन है वो भी करते हैं। हाँ, जब छापा पड़ता है पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन पूछो तो इतने करोड़ तुमने इकट्ठा किया, उसको क्यों दुख दिया, उसको उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुम्हारे घर में तुम्हारा नौकर था, वो तुम्हारे लिए इतना करता था, तुमने उसको मार पीट करके अलग कर दिया, किसी ने उसके बारे में कुछ कहा और तुमने उसको भगा दिया। बहुत कुछ तुम कर रहे हो, धनाढ्य हो, क्यों कर रहे हो? दे दो ना थोड़ा बहुत, छापा पड़ा अब जाओ, वो अच्छा है। लेकिन किसी को हम दे नहीं सकते, इतना लालच, इतना लालच। करोड़ होते हुए भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, होते हुए भी। कितनों के आप देखो पेपर भरे हुए हैं। आज से 20-25 साल पहले भी वो न्यूज नहीं होते थे जो आज आ रहे हैं। प्रतिदिन हत्या है, प्रतिदिन बलात्कार है, प्रतिदिन चोरी है, प्रतिदिन सुसाइड केस है। पूरे अखबार में ये ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ है। प्रतिदिन, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो पेपर में ये बातें नहीं हो। ये समाचार पहले नहीं होते थे। तुम्हारा पाप कितना बढ़ता जा रहा है तो सुख कहां से मिलेगा? इसलिए आज परमात्मा इतना सुंदर हमें सिखा रहे हैं। और इस शिक्षा में हमें ना कोई खर्चा करना पड़ रहा है, ना कोई मेहनत है, बहुत सहज है। सिर्फ अपने विचार को बदलते चले जाओ, सुखी हो जाएंगे। विचार में बदलाव आना चाहिए, और परमात्मा ने वो विचार को ही बदला जिसे हम पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं। विचार ही तो बदला ना, सोचो मैं एक आत्मा हूं। और पहले हम क्या सोचते थे? मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास इतना है। और अब क्या सोचते हैं? कि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। और पहले सोचते थे मैं तो बीमार हूं, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। या तो हीन सोचेंगे या बहुत ऊंची बातें सोचेंगे जो हम हैं ही नहीं। तो आज परमात्मा पिता ने हमें वो बात सिखाई जिसके लिए हम सब यहां आए। और इतना सहज, इतना अच्छा, इतना प्रैक्टिकल कि आप अगर इन विचारों को लेकर चलते रहे तो आपका दिन बदल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका जीवन भी बदल जाएगा। और जब हमारा जीवन बदलने लगता है ना तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये तो कल तक इतना दुखी था, आज ये खुश कैसे रह रहा है? तो कहते हैं ओम शांति में मत जाना, वहां वहां है ना, वहां तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा और तुम जो हो ना तुम भूल जाओगे। बात तो सही बोलते हैं, सचमुच जादू हो गया, सचमुच हम बदल गए, लेकिन ये बदलाव तो हमें चाहिए था ना, ये तो हमें चाहिए था, ये सुख तो हमें चाहिए था ना, इसी सुख के लिए तो हम यहां वहां भागते फिरते थे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। कभी फलाने स्वामी जी के पास गए, फलाने बाबा के पास गए, फिर पता पड़ा वो बाबा तो जेल में बैठा है। तो ऐसे अनेक बातें हुई, लेकिन आज जो बातें मिली, आज इस बाबा को कोई जेल लेके जाएगा? कोई पकड़ ही नहीं सकता है। और ये बाबा ऐसी बातें सिखाता है कि हमारा प्रैक्टिकल जीवन बना देता है। ऐसा नहीं कि थियोरिटिकल है कि हाँ तुम्हारे ऐसा हो जाएगा। आज कितने ऐसे लोग देखे जो पहले गरीब थे, बहुत गरीब, घर नहीं, किसी तरह से कहीं रहता है, मुश्किल से पैसा कमा के किराया भरता है, मुश्किल से खाने पीने की जुगाड़ करता है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद ऐसा बदलाव आया कि आज उसका मकान बन गया, आज उसके बाल बच्चे बड़े हो गए, कोई बहुत अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, बच्चों की शादियां हो गई और वो बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं, बस मैं तो बाबा की सेवा में हूं, इतना अच्छा लगता है। क्यों, ऐसे कैसे हो गया? अरे जब से ज्ञान मिला ना, बस बाबा हमारा सब करता गया और बाबा ही करता है। सही मैं बताऊं तो करने वाला वही है, मुझे सिर्फ अपने विचार को बदलना है। और जब ऐसे ऐसे हम करते चलते हैं तो हमारा जीवन भरपूर होने लगता है। ये है हमारा श्रेष्ठ कर्म और ये है हमारे पुण्य की कमाई, और ये पुण्य की कमाई हमारा कहाँ जाएगा? सत्युग में हमें ले जाएगा। हमारा ये कर्म हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। आप लाखों जुगाड़ करके रखो, करोड़ इकट्ठा कर लो, सब यहाँ रह जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो हमारा श्रेष्ठ कर्म, और ये पुण्य की कमाई हमें भविष्य अनेक जन्म तक सुखी रखेगा। तो ये कमाई श्रेष्ठ कर्म है। और जब हम इस कमाई को करके नई दुनिया में पहुंचेंगे तो हमको श्रेष्ठ कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अकीचार धन दौलत होगा, कोई मकान दुकान के लिए हमको कुछ खरीदारी भी नहीं करनी पड़ेगी, जहां तक है आप अपना बना लो। लैंड की खरीदारी वहां थोड़ी होती है सतयुग में, जहां तक आप लेना चाहो आप ले लो। बाबा कहते ना, दिल्ली जैसा एक एक का घर होगा, एक एक शहर जितना एक एक का घर होगा, और उस घर में सब कुछ होगा, कहीं इधर उधर जाने की खरीदारी करने की जरूरत ही नहीं, वही सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा सुंदर दुनिया में हमको भगवान ले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम वो पुरुषार्थ करें, हम अपना श्रेष्ठ कमाई करें और सब बातों को हम छोड़ दें, भूल जाएं, सिर्फ अपने विचारों को शुद्ध करें, शिव बाबा को याद करें, जीवन पवित्र बनाएं, सबके साथ प्यार की भावना रखें, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखें, तो हमारा जीवन बदलता चला जाएगा और हम आज जो हैं हम इससे बहुत कई गुना सुख यहाँ ही प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि भविष्य में मिलेगा, लेकिन यहाँ ही मिलेगा। आपको वो मान शान आपके ही लोग आपको देंगे, जो आज आपके लिए अनेक बातें बोलते हैं, कल आपसे ही आकर हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे आप जो बोलोगे, आप जो कहोगे, आपकी ही हम मानेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत खजाना है। खजाना कौन सा? ज्ञान रत्न, जो आज भगवान हमें दे रहा है। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान बल है, शक्ति है, और जिस शक्ति को लेने के लिए हम यहाँ रोज आते हैं वो है भगवान का वो महावाक्य। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, साधारण मनुष्य का कहा हुआ नहीं है, ये भगवान का कहा हुआ महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, उसके सिवाय कोई ऐसा वाक्य सुना ही नहीं सकता। तो ये जो मुरली है ये हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाता है। तो जब हम सत्ययुग में पहुंचेंगे ना, तो हम कोई कर्म नहीं करेंगे, वहां जो भी करेंगे वो अकर्म होगा। अकर्म माना जिसका ना कोई पाप का खाता होगा ना कोई पुण्य का खाता होगा। जिस कर्म को करने से कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई महान कर्तव्य कर लिया, क्योंकि वह विषय विकार नहीं है, दुख दर्द नहीं है, वहां कोई लोभ लालच भी नहीं है। इसीलिए हम जो भी कर्म करेंगे वो सबके लिए एक जैसा होगा। हम सबसे मीठी बातें करेंगे, किसी को कुछ चीज जरूरत है उसको दे दिया, कर दिया, वो भी सुखी हो गया, हम भी सुखी हो गए। कोई माना लेन देन में भी कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जो हमें लगेगा कि इसको ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, माना आम जैसे। इसको अकर्म कहा जाता है। तो सतयुग के सारे कर्म अकर्म होंगे, क्योंकि विषय विकार नहीं है। यहां विष विकार है, यहां जो भी कर्म करेंगे सारे ही त्रुटि वाला होगा। हम अपना परिवार भी जो बनाते हैं, आप सोचो एक व्यक्ति जो परिवार बसाता है, आज उसका बच्चा होता है तो वो बच्चे के लिए क्या सोचता है, आज मैं इसको बहुत अच्छी परवरिश दूंगा, कल ये हमको देखेगा। अपेक्षाएं रखी ना, रखी ना। लेकिन सतयुग में ये बातें नहीं होंगी कि ये हमको देखेगा, वो देखेगा ही, उसका फर्ज है, वो देखेगा ही। सतयुग माना सत्य नियम प्रमाण, सत्य है ना कि आज जिसने कल हमारे लिए किया था, कल मैं बच्चा था, आज मैं बड़ा हो गया, तो पिता को देखना है, जरूरी है, वो मेरा फर्ज बनता है। कोई कहेगा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, लेकिन आज हम अपेक्षा रखते हैं। तो अपेक्षा रखना माना मैंने अपने स्वार्थ के लिए सोचा, तो ये विकर्म हुआ ना कि सुकर्म हुआ, आप क्या कहोगे? जो हम अपेक्षा रखते हैं, जो हम चाहते हैं कि तुमसे हमको ये मिले, तो इसका मतलब है मैं अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा हूं, इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि आज इसको दूंगा तो कल ये मुझे देगा। तो ये चीजें जो है सामान्य बातें, मैंने कहा कि आज मैं जो कुछ करती हूं वो सब विकर्म के खाते में जाता है, सुकर्म नहीं है। तो ऐसे सुकर्म शिव बाबा सिखाते हैं कि मुझे याद करके करो तो ये तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म होगा, और परमात्मा की याद में जो भी हम करेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा। परमात्मा की याद में भ्रष्ट कर्म नहीं होगा। अगर कोई भ्रष्ट कर्म करता है और शिव बाबा कहता है, तो वो उसका सुकर्म नहीं है, उसका विकर्म ही है। तो परमात्मा की याद माना याद, ऐसा नहीं है कि दिखावे की याद। जो याद में करेंगे वो श्रेष्ठ होगा। इसलिए परमात्मा पिता ने हमें परमात्मा को याद करना भी सिखाया है। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान को याद करो, सिखाया किसी ने नहीं। कोई भी कहीं भी किसी भी सत्संग में आप चले जाओ, सिखाया किसी ने नहीं कि तुम भगवान को ऐसे याद करो, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो, ये किसी ने नहीं कहा और ना किसी ने सिखाया। परमात्मा पिता शिव बाबा ने सिखाया कि तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे भी परम आत्मा समझकर मेरे साथ अपनी बुद्धि का योग लगाओ। पिता ने सिखाया, तुम मुझे इस तरह से याद करोगे तो मेरी किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी, जिससे तुम स्वस्थ भी हो जाओगे और तुम पावन भी बन जाओगे। ये उन्होंने सिखाया। तो सबसे पहले सिखाया तुम अपने को डिटैच करो, तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर के साथ मुझे याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन शरीर से परे हो जाओ, अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो तो जुड़ेगा, तब कनेक्शन होगा। कनेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम देह में हो, जब तक तुम्हें देह का भान है। अब तुम इस तरह से मेरे साथ जोड़ो। तो परमात्मा ने सिखाया श्रेष्ठ कर्म। जो इस प्रकार डिटैच होके याद करेगा वो याद उसका सही है। डिटैच होकर हम परमात्मा को याद करेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए सतयुग में आयु भी बड़ी होगी और रोग बीमारी कुछ भी नहीं होगा। रोग भोग ये सब वहां नहीं है। भोगी नहीं होंगे, योगी होंगे। योग लगाएंगे नहीं, लेकिन योग का प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। वहां हम कोई योग नहीं लगाएंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, लेकिन संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे। तो ये है श्रेष्ठ कर्म का परिणाम। और आज जो हम कर्म करते उससे हमारा खाता खाली हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हम सड़क पर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पागल होते रहते हैं, भिखारी बन जाते हैं और अंत में मृत्यु भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए वर्तमान को समझो और उस भविष्य को भी देखो जो परमात्मा पिता ने कहा कितना सत्य है और आज हम किस तरह से चलते थे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल हमारा जीवन बदल रहा है और हमें अब उस दुनिया में जाना है जहां हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी संपन्न बन जाएंगे। तो ऐसा जीवन हम चाहते थे और ऐसा जीवन आज हमें अनायास ही मिल गया। हमें लॉटरी मिल गई, हमें सब कुछ मिल गया। है ना ऐसा कि आप कहोगे नहीं है? इसीलिए उस परमात्मा पिता को बहुत प्यार से याद करेंगे। ओम शांति।
जो पुरुषार्थी कर